हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक क्रमांक 51, 52 और 53 की चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। श्लोक क्रमांक 51, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पे देखेंगे, इससे पहले भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि उन्हें युद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि युद्ध करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ये कर्म कांडीय विचार है। यहां पे भगवान युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं बल्कि योग में स्थित होने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि फल प्राप्ति की इच्छा के बिना निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा भगवान यहां पे दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से व्यक्ति कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। यहां पे भगवान ने क्लियरली नहीं बताया है कि वो भगवान का धाम है, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक जगत के बारे में पहली बार यहां पे बोला है, मुक्ति के बारे में पहली बार भगवान ने यहां पे भगवद गीता में बोला है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां जो अब युद्ध या कह सकते हैं कार्य करने का जो मोटिवेशन जो इंटेंशन है वो चेंज हो गया है। ये उच्चतर मोटिवेशन है, ये श्रेष्ठतर मोटिवेशन है कर्मकांड विचार से अलग। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि वो महत्पद है क्या। दूसरा चीज है, शब्द आ रहा है मनीषी, मन ईश, ईश मतलब होता है नियंता और मनीषी मतलब जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। और हमने पहले भी चर्चा किया था कि मन को नियंत्रित करने का मतलब योग में क्या है। मन का जो श्रृंखलता है, जो चंचलता है, जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जब दुख मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इससे विचलित हुए बिना मन को समभाव में रखते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना, निष्काम भाव से सेवा करते रहना, ये मन का कंट्रोल है। नहीं तो मन उद्विग्न हो जाता है और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं रहता। तो इस प्रकार से भक्त लोग अपने आप को कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो मनीषी हैं। मनीषी मतलब मन को नियंत्रण करने वाले व्यक्ति, ना कि मन के नियंत्रण में आने वाले व्यक्ति। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पुदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वस पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर के समान, समाय जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पर संकट हो। मतलब जिस स्थान में हम यहाँ पे रह रहे हैं भौतिक जगत में, वास्तवतः हर स्थिति जो है वो खतरे की ही स्थिति है। चाहे व्यक्ति भौतिक रूप से कितनी भी उच्च पद पे हो, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो सकता है और स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो सकती है। जैसे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट का उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है कैनेडी का, जो उस समय बहुत बड़ी मतलब अमेरिका के वो प्राइम मिनिस्टर होता है नहीं प्रेसिडेंट थे, और वो कहीं पे यात्रा कर रहे थे या कहीं पब्लिक प्लेस में गए थे, वहां किसी ने गोली मार दी और वो मर गए। तो सारी सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद ही मारे गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस जगत में बहुत बड़ा व्यक्ति भी एक क्षण में तुरंत ही इस जगत में एकदम निम्न स्थिति में आ सकता है। तो यही बात बता रहे हैं, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेते हैं, और इस नाव का आश्रय लेने से जो भवसागर है, भगवत धाम पहुंचने का जो रास्ता है, ये कह सकते हैं इसके बीच में बहुत बड़ा सागर भवसागर बोला जाता है, और इसको जन और उसको वो सागर जो है एक भक्त के लिए एक गाय के पांव से जितना बड़ा गड्ढा बनेगा उसमें जितना पानी हो उसके बराबर हो जाता है, यानी इसको लांगने में कोई कष्ट नहीं होता। ये सब भगवत कृपा से होता है अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं और भक्ति में संलग्न होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। भक्त को और कोई अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि मेरे प्राण जो है ब्रह्मरंध्र से निकले ना यहाँ से निकले वहां से निकले, केवल भगवत स्मरण में भक्त को लगना है और इसके द्वारा वो भगवान के धाम बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। अज्ञानवश मनुष्य को यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ये बहुत लाइन है। हम कितनी बार बोलते भी हैं कि जगत दुख का घर है, फिर भी सुनते भी हैं कि दुख का घर है, फिर भी ये भावना बनी रहती है कि जगत में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इंद्रिय तृप्ति करके मैं और सुखी हो जाऊंगा। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। जैसे एक कथा आती है दो आलसियों की, दो आलसी थे वो सो रहा था, दोनों लोग जो है एक टेंट में सो रहे थे और टेंट में आग लग गई। तो एक आलसी ने बोला कि अरे भाई मेरी जो है मुझे गर्मी लग रही है, मुझको गर्मी लग रही है। तो बोलता है, उसने बोला बीबी मतलब मेरी बैग जो है मेरी जो पीठ है वो जल रही है। तो दूसरे ने बोला एमए मतलब मूव असाइड यानी कि घूम जाओ, अगर पीठ जल रही है तो अपना मुंह सामने कर दो। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि एक भौतिक स्थिति को अगर इसमें हमें कुछ कष्ट प्राप्त हो रहा तो उसको ठीक कर देंगे तो दूसरी भौतिक स्थिति में हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वस्तुतः हर भौतिक स्थिति में हम दुखी भोग रहे हैं और अज्ञान के कारण हम सोच रहे हैं कि कुछ भौतिक कार्य करके हम अपने दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि हम हैं कौन, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और भगवान की स्थिति को भी समझना आवश्यक है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, और इस जगत की स्थिति को भी समझना आवश्यक है कि जगत किस प्रकार से मेरे स्वरूप से मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग है, जड़ है, और भगवान पूर्ण चेतन है, मैं पूर्ण चेतन हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान की महिमा को समझते हैं तभी हम उनकी भक्ति में लगते हैं। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे किसी भी साधन के द्वारा तो हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आवश्यक है जानना कि हम हमेशा कृष्ण के दास ही रहेंगे। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। तो यही बात हम अभी आपको बोल रहे थे कि जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं भगवान हूँ या भगवान बन जाऊँगा ऐसा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के चरणों के प्रति अपराध कर रहा है और भगवान के चरणों का आश्रय वो नहीं ले रहा है। जब मैं सोचने लग जाऊँगा कि मैं ही कृष्ण हूँ या कृष्ण मुझ में कोई अंतर नहीं है तो मैं उनके चरण कमलों की आश्रय क्यों लूँगा। किंतु जो ये समझते हैं, समझते हुए कि उनकी उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। फिर मैं आपको रिपीट करूँगा कि प्रभुपाद जी हमें परिनिष्ठित अवस्था को लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग केवल वर्णाश्रम के चक्कर में ना फंसे रहें, वर्णाश्रम के नियमों का पालन यथासंभव कर सकते हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना है, नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करना होता है। अब उन लोगों के बारे में बताया जाएगा जिनकी बुद्धि जो है वो कर्मजम नहीं है, कर्मात्मक भोग की भावना से रहित बुद्धि हो गई है, उसके बारे में बताया जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित रश्यति तदागंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सभी के प्रति अन्मय अन्य मनस्क हो जाओगे। सुने हुए तथा सुनने योग्य, सुने हुए मतलब हम इस जब जगत में घूमते रहते हैं, इस जगत रूपी जंगल में घूमते रहते हैं, तो मोह उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे को सुनाई पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो यही बोला जाता है कि हमारे शरीर को नाम दे करके हमें बोला जाता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हारा नाम सलील है, तुम्हारा नाम ये है, वो है, ऐसे करके जब हम बार बार सुनते हैं तुम्हारे हृदय में ये मोह कि हम शरीर हैं बढ़ जाता है। और वेदों की बातें भी अगर सुनता है व्यक्ति कि भाई देखो आप ये यज्ञ करोगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में सुख भोगोगे, तो इस प्रकार की भावनाओं को सुन करके व्यक्ति भगवान धाम जाने की इच्छा को त्याग देता है, जाना ही नहीं चाहता, और ऐसी इस मोह के कारण व्यक्ति भक्ति में स्थिर नहीं रह पाता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं तो फिर हम इन बातों के प्रति अनमनस्क हो जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्राप्ति के लिए कोई भी अगर कर्मकांड करना होगा, कुछ क्रिया करनी होगी, तो उसके प्रति भक्त निष्प्रिय है, बिना इच्छा के हो जाएंगे, कोई उसमें करने में रुचि नहीं रहेगी, करेंगे भी नहीं, भगवान की भक्ति में ही विलक्षण लग्न रहेंगे। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई, तो हमने अभी चर्चा कर ली। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। ये इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं अगर नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भगवद गीता को पढ़ें, भगवान की भक्ति करें, तो उसमें एक ऐसा अद्भुत रस मिलने लगता है भक्त को कि अपने आप ही देवताओं की पूजा या और किसी पूजा पाठ में उसकी रुचि नहीं रहती, उसको कृष्ण की भक्ति करने में और कृष्ण में ही अपने मन को लगाए रखने में अधिक से अधिक सुख मिलता है, और बाकी सारी क्रियाओं को वो एक फॉर्मेलिटी या ड्यूटी के रूप में करते हैं। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानातुभ्यं नमो भो देवः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं शम्य शम्यताम् यत्र क्वापि निषिद्य यादवो कुलतमस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारम अगम हरामि तदलम मन्ये किं मन्ये न मे। तो ये महान आचार्य श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु थे, उनके ये उद्गार हैं, कह रहे हैं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना यानी कि तीन समय की जाने वाली संध्या वंदन गायत्री इत्यादि तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये भक्त कौन से भक्त हैं, ये बिल्कुल हमने चर्चा किया था इसके बारे में कल, निरपेक्ष भक्त हैं जिनको वर्णाश्रम इत्यादि में जैसे जो सब क्रियाएं बताई जाती हैं, जैसे कि आप पितरों को आप वो तर्पण करें, देवताओं की पूजा करें, स्नान करें नियमित रूप से, तो ये एक महान भक्त कृष्ण भक्ति में इतना सराबोर हो जाते हैं कि अब इन सभी क्रियाओं के प्रति वो एकदम निरपेक्ष हो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं होती करने की। क्यों नहीं होती, क्योंकि मन अब भगवान में ही लगा हुआ है। तो यदि हमारा मन लगातार भगवान में नहीं लगा है तो हमको भगवान की भक्ति के अभ्यास के साथ साथ इन कर्मों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कल से स्नान करना बंद कर दें, मंगल आरती जाना बंद कर दें, क्योंकि हमारी ये स्थिति नहीं हुई है कि स्मारम स्मारम अगम हराम इतदलम, हर जगह हर परिस्थिति में हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको कम से कम परिनिष्ठित होना चाहिए, यानी कि कृष्ण की भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान के करना चाहिए और बाकी क्रियाओं को ड्यूटीफुली करना चाहिए। ये भक्त जो है वो ड्यूटी ही करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं सुनना, केवल कृष्ण का स्मरण करना है। लेकिन जीवन में कम से कम एक एस्पिरेशन होनी चाहिए, यानी कि लालसा होनी चाहिए, कभी तो मैं इस स्थिति पे पहुंचूंगा। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, और हम लोग सब नव दीक्षित ही हैं, शुरुआत में ही हैं भक्ति के, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि सभी सिद्धि सभी नियमों का उद्देश्य यही है कि कृष्ण का हमेशा स्मरण हो और कृष्ण का विस्मृति ना हो। तो अगर इस स्थिति पे व्यक्ति पहुंच गया है तो बाकी सारे नियम पालन करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्र में वर्णित में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो वेदों में जो नियम वगैरह बताए गए हैं उनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति कृष्ण को समझे और कोई शुद्ध भक्ति का आचरण करके अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि जहां भी हो उसे कृष्ण का स्मरण होने लगे। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति वेद पारग है, वो वेदों के नियमों का पार कर चुका है। पार कर चुका है मतलब जो वेदों के नियमों का उद्देश्य है उसको धारण कर चुका है। उधर उद्देश्य यही है कि हृदय का शुद्धिकरण और इसके द्वारा कृष्ण की अविचल स्मृति। लास्ट को देखेंगे, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पिक्चर देख रहा है और उसका मन कहीं जा नहीं रहा, कोई व्यक्ति और कोई फुटबॉल खेल रहा है या कोई म्यूजिक का अभ्यास कर रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसका मन कहीं और नहीं जा रहा, तो इसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति समाधि में है। समाधि का अर्थ है उस व्यक्ति का मन कृष्ण भावना से अलग ना हो, कृष्ण के चरणों से उसका मन कहीं और ना जाए, तब उसको समाधि में कहा जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, अलंकारमय भाषा का अर्थ क्या है वेदों का, मतलब वेदों में जो बताया गया है कि आप इस प्रकार के कार्य करें, इस प्रकार के यज्ञ करें, इससे आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, आप जीवन भर सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, अमर हो जाएंगे, इन प्रकार की बातों से जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरणा दे रही हैं नियम के अनुसार, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरणा दे रही हैं, तो इसके लिए इसमें उस व्यक्ति की मति नहीं जाती है और उसकी मति केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपनी हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने के लिए फिक्स्ड अप एकदम स्थित हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति समाधि को प्राप्त है। हाँ, अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि समाधि का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति खाली एक जगह बैठा रहेगा, कार्य विभक्त करते हैं, पूरी तरह से कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। तो ये से प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल समाधि कहा करते थे, कार्य कर रहा है लेकिन हर कार्य कृष्ण को समर्पित है, जैसे गोपियां करती थी, कॉल बाल करते हैं, सब कार्य कर रहे हैं लेकिन जो चित्त है वो कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। यही बात हम चर्चा कर रहे थे, समाधि का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति केवल एक जगह बैठ के बस चिंतन करता रहे, ये अर्थ है, लेकिन एक और जो हायर अर्थ है वो ये है कि सारे कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य को हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकार माई वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, यानी कि भोग प्राप्ति के लिए, चाहे वो स्वर्ग की भोग भी क्यों ना हो, वो कोई भी कर्मकांड करने में, यज्ञ करने में रुचि नहीं रखते हैं सच्चे भक्त। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, सानिध्य में रहता है मतलब नाम उच्चारण करता है, कथा श्रवण करता है, कथा बोलता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, इस प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस देव अवस्था में समझे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम लगातार भगवान की सेवा में रत रहते हैं तब हमें भगवान का जो उपदेश है वो अच्छी प्रकार से समझ में आता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, यानी कि कोई डाउट नहीं रह जाता भक्त के हृदय में। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था। धर्म का तत्व बहुत गोह्य है और भक्तों का हृदय एक गुफा की तरह है और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के कारण ही उस धर्म के तत्व को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा में रत रहते हैं भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, तो हृदय में भगवत कृपा से जो ज्ञान उदित होता है उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाता भगवान के बारे में। और इसी को भागवत में बोला गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय शियन्त चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनिश्वरे। हर प्रकार का संशय नष्ट हो जाता है श्रीमद् भागवत भगवद गीता को सुनने से। और जब हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है तो पूरी तरह से अपने वास्तविक स्थिति को समझ पाता है व्यक्ति और भगवान की स्थिति को समझ पाता है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। यानी जो जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, हमारे गुरु महाराज सिखा रहे हैं, जो वैष्णव ने सिखाया है, बस उस उनकी आज्ञा का पालन अगर हम करते रहें तो भगवत कृपा से सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में ही उदित हो जाएगा। आगे के श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इवन 54 श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स आए हैं, उसको भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।